ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्णा हरे
हरे राम
हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा
कृष्णा हरे हरे
हरे
राम
हरे राम
राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में नवे अध्याय में श्री भीष्मदेव की कहानी आती है। श्री भीष्मदेव का चरित्र बहुत दिव्य है, इसलिए वो श्रीमद् भागवत में आता है। और अभी भीष्म पंचक चालू है, भीष्म पंचक कार्तिक एकादशी से उसका आरंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक वो 5 दिन का व्रत होता है। और भीष्म पंचक का जो व्रत है उसका तो विस्तार में वर्णन अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी व्रत करते हैं वो भीष्मदेव ने शरशय्या पर पड़ने के बाद पर 5 दिन का व्रत किया था और उसी के प्रभाव से वो कृष्ण भगवान का दर्शन करके भगवत धाम चले गए। और ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक का व्रत नहीं करता या नहीं कर पाता या टूट जाता है, वो भी अगर भीष्म पंचक का व्रत कर लेता है तो उसको कार्तिक के व्रत करने का लाभ मिलता है। तो इसलिए कार्तिक व्रत का हरि भक्ति विलास में और कार्तिक महात्म्य इस अध्याय में काफ़ी महत्वपूर्ण वर्णन दिया गया है। आप लोग आगे बैठो ना, पीछे को बैठते हो, जगह जगह इधर पड़ी। हाँ कोई बात नहीं। तो ऐसा भीष्म पंचक जो है वो कार्तिक के आखिरी 5 दिन है और कार्तिक के आखिरी दिन जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान ने रास भी रचाया है। और कार्तिक पूर्णिमा का दिन तुलसी विवाह का भी दिन है। वैसे कार्तिक एकादशी में भी तुलसी विवाह होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी का विवाह होता है। तो भीष्मदेव के बारे में एनीवेज जो व्रत जो है भीष्म पंचक का उसमें लोग उपवास रखते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है उसमें फलाहार करते हैं। और कुछ लोग केवल दिन में एक बार खिचड़ी खाते हैं शाम को और दिन भर फलाहार करते हैं और 5ों दिन करते हैं व्रत। और कुछ लोग 5ों दिन फलाहार करते हैं और 5वें दिन ब्राह्मणों को वैष्णव ब्राह्मणों को घर में बुलाते हैं और अपने हाथ से अन्न प्रसाद पंच पकवान बनाते हैं, अपने हाथ से उनको परोसते हैं, सत्कार करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं और खुद नहीं खाते हैं, अगले दिन खुद का पारण करते हैं उपवास का। और उसमें भी बहुत नियम हैं कि बहुत बहुत बीज वाले फल नहीं खाना है, उसमें बहुत कम बीज होते हैं, एक ही बीज होता है, जैसे क्या कहें आपको, आम हो सकता है गुठली वाला या खजूर है जो एक ही बीज वाला है, कम से कम बीज हो उसके अंदर। एप्पल खा सकते हैं लेकिन वो भी अमरूद नहीं खा सकते हैं, पपीता नहीं खा सकते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं, ऐसा भी नियम है। एनीवेज वो डिटेल नियम का कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हरे कृष्णा, दोपहर के बाद में क्लास देना, क्लास सुनना, इससे बड़ी कार्तिक की तपस्या कोई नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि दीवार का सहारा मत लो, दीवार का सहारा लेने से सबसे पहले निंद्रा देवी हमने हावी हो जाती है। तो ये जो डिटेल होता है ना, कभी ये मत करो, वो बीज वाला मत खाओ, डेट वाला मत खाओ, लाल रंग वाला मत खाओ, वो सब चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होते, जिससे इतना महत्वपूर्ण भाव होता है। भाव क्या होना चाहिए कि हम विष्णुदेव की याद में उनके लिए कुछ त्याग कर रहे हैं, कुछ समर्पित कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी व्रत के पीछे भगवान की प्रसन्नता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान या भगवान के भक्तों की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। और भगवान और भगवान की प्रसन्नता छोड़कर बाकी कड़क कठोर नियमों के अंदर हम फंस जाते हैं, तो फिर वो व्रत का जो परिणाम है ना, वो कर्मकांड के रूप में मिलेगा आपको। और हमारा कोई भी व्रत हम परमकांड के लिए नहीं करते हैं। कर्मकांड का मतलब होता है कि किसी कर्म को करने से कुछ ना कुछ लाभ होता है, और वो लाभ मिलने के लिए हम लोग व्रत करते हैं। लाभ मन में रख के ही वो कर्म करते हैं, उसको कर्मकांड कहते हैं। तो हम लोग वो वैष्णव भक्ति के अंदर कोई कर्मकांड का कोई लवलेश नहीं है। यहाँ तक कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी करके एक साइंस है, उसके अंदर आपको बताएंगे आपकी कौन सी दशा चल रही है और क्या तकलीफ होगी आपको, लेकिन आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप उसके ऊपर भी वो जाके पूजा करो, फिर वट वृक्ष की पूजा करो, फिर ये शनिवार के दिन फूल चढ़ाओ, लाल रंग के चढ़ाओ, ये करो, फिर ये करो, फिर चार प्राणों को दान दो, फिर तीन गुरुवार करो। ऐसे बहुत सारे विधि भी बताए गए, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो कुछ नहीं बताते हैं। वो केवल हरिनाम का उपदेश देते हैं बस खाली, क्योंकि हमारा जो प्रवृत्ति है ना, वो केवल फल और फल और फल से जुड़ा हुआ है। हमको हर चीज़ के अंदर फल चाहिए, और ऐसा भी है कि बिना कुछ के भी फल चाहिए हमको। ये कलयुग का सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ है। कुछ नहीं करना है हमको, काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, उसके योग्य नहीं बनना है, लेकिन सारा जलेबी चाहिए हमको अल्टीमेटली, है ना। योग्यता के बिना हमको फल चाहिए। तो ऐसी अवस्था में अगर फल फल के पीछे भागेंगे तो दोबारा बार 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 आते रहेंगे, क्योंकि फल की इच्छा फल खाने के बाद में भी संतुष्ट नहीं होती है। होती है क्या? और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। तो ये कभी रुकने वाला नहीं है। जितना फल मिलेगा उतना फल खाएगा, उतना आनंद लेगा, उतना और चाहेगा, और मेहनत करेगा, दोबारा आएगा फिर उसके लिए, उसके अनुकूल शरीर धारण करके आएगा। बहुत खाने की इच्छा होगी तो हाथी बन कर आएगा। ऐसा है सभी। तो ये व्रत जो है वो विष्णुदेव का चरित्र जो है वो इतना श्रेष्ठ पवित्र चरित्र है, उसको ध्यान में रखते हुए उनके प्रति सम्मान की भावना से, उनके प्रति समर्पण की भावना से, उनके उदाहरण को सामने रखते हुए प्रेरणा लेते हुए उसको पालन करना है। और नहीं करेंगे कोई अपराध नहीं है, ये भी समझ लेना। अरे क्या आप विष्णुमंत्र नहीं करते हो, कैसे भक्त हो आप, ऐसे एकादशी को बोल सकते हैं। एकादशी में हर वैष्णव को करना ही चाहिए उपवास, लेकिन विश्व पंचक है या कार्तिक का व्रत कठोर तरीके से करने का है, चतुर्मास्य का व्रत कठोर तरीके से करना है, ये बहुत डिटेल की बातें हैं। और वो सारे के पीछे अगर भगवत संतुष्टि है तो सारे व्रत जो है वो महत्वपूर्ण है। और सारे व्रतों के पीछे कोई लाभ की भावना है तो फिर वो हमारे लिए भक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। तो विष्णुदेव कौन थे उसका संक्षेप में हम सोचना चाहेंगे। गंगा देवी का जब विवाह हुआ शंतनु से, बहुत लंबी लंबी कहानी है। अभी शंतनु जो थे वो गंगा देवी से आकर्षित हो गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो गंगा देवी वहाँ पर क्या कर रही थी, क्योंकि गंगा देवी ने ऊपर स्वर्ग में कुछ उनके हाथ से अपराध हुआ था, तो उनको कहा गया कि जाओ आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। उसी समय अष्टवसु थे, अष्टवसु ने किसी ऋषि का अपमान किया तो उनको भी शाप दिया गया कि आपको पृथ्वी पर जन्म देना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बार गर्भवास तो आपको सहन करना ही पड़ेगा, गर्भ का निवास और जन्म, तो जन्म की यातना आपकी भुगनी ही पड़ेगी, लेकिन ठीक है आपको मैं उत्साह देता हूँ कि जन्म के बाद तुरंत आपका वध हो जाएगा, मर जाएंगे आप। तो फिर वो सब लोग चाह रहे थे पृथ्वी पर जन्म देने के लिए, तो उनकी मुलाकात हुई अष्टवसु की और गंगा देवी की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपको जन्म लेना ही है, मुझे भी जाना ही है और शाप प्राप्त है, तो मेरे गर्भ से आप जन्म लेना और मैं ही आपके अपने हाथ से आपका वध करूंगी और फिर दोबारा आप अपने जगह पर चले जाओगे। तो वो शाप का परिणाम के रूप में गंगा जी वहाँ घूम रही थी और शंतनु आकर्षित होते हैं और शंतनु उसके विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो वो बोलती है कि एक ही विवाह की मेरी शर्त है आपके साथ, मैं विवाह के बाद जो भी कुछ करूंगी ना, आप कभी क्यों ऐसा नहीं पूछेंगे। ऐसा किसी पत्नी ने बोला है क्या आपको ऐसा? मुझे क्यों पूछना नहीं, बस जो मैं करूँगी करते जाऊँगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे मुझे, क्योंकि उसको पता था कि वो क्या करने वाली है, उसको विरोध नहीं होना था। अष्टवसुओं को मुक्त करना है तो उनको वो शर्त चाहिए थी। हाँ बोला, वो इतने ही लुप्त हो गए थे उसके ऊपर, तो कहा कि ठीक है, शादी हो गई। जैसे ही पहला बच्चा हुआ उसको लेके गई सीधे नदी में, अपने पानी में ही डुबा दिया उसको। संतनु देखा है, उसको चिल्लाना है, उसको प्रश्न पूछना है, लेकिन वो बोल रहा है अरे पूछूंगा तो चली जाएगी। दूसरी बार, तीसरी बार, सातवीं बार, एक एक बच्चे को लेकर, राजपुत्र अभी एक एक पुत्र राजा के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, सात बच्चों को डुबा देती है, उनकी आंखों के सामने उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि वो जाते पीछे पीछे कहाँ लेके जा रही है, हर बार अपने गंगा जी के जल में उसको डुबा रही है। आठवीं बार उसको रहा नहीं जाता, क्या कर रही हो तुम, इतनी दुष्ट कार्य कर रही हो, मेरे संतानों को नष्ट कर रही हो, क्यों कर रही हो ऐसे। वो कुछ नहीं बोलते, राजन आपने सवाल पूछा तो मैं जा रही हूं, तो इस पुत्र को मैं अभी, आपने क्यों प्रश्न पूछा तो उसको नहीं भाऊंगी, लेकिन मैं उसको भी ले जाऊंगी। राजा बोलता है बाप रे, एक प्रश्न पूछा तो पुत्र भी गया और पत्नी भी गई, सब खो गया। उसके बाद में सत्यवती की कथा आती है, सत्यवती फिर वो उस पर प्रेम होता है उसका, फिर वो एनीवेज एक दिन वो गंगा किनारे ऐसे खड़े रहते हैं, तो अचानक आकाश में से इतने बाण आते हैं और इस तरह से गंगा जी में जाके खड़े हो जाते हैं कि गंगा जी का प्रवाह रुक जाता है, उन बाणों के आगे पानी नहीं, खत्म, मतलब बांध तैयार होता है, बांध मतलब कितने ऐसे बाण ऐसे लगाए होंगे उन्होंने, जैसे हम लोग बुनते हैं ना कोई लकड़ी, वो क्या गर्म बुनते हैं ना, कैसा बुनते हैं ऐसे, पर्दा बन जाता है ना उसका, पूरा धागे का पर्दा बन जाता है, स्वेटर बन जाता है, प्रकाश भी निकलता ना इसमें से, ऐसे इतने बाण इतनी कुशलता से मारता है कोई कि आकाश में ऐसे आते हैं और पूरा बांध, आगे पानी खत्म, यहाँ पर बाढ़। तो राजा पूछता है क्या हुआ, उतने में एक बालक भाग भाग के आता है धनुष बाण लेकर, उसकी माता भी भाग भाग के आती है, और बालक पूछता है माता देखो मैंने कैसा किया है, कैसा लगा आपको मेरा कौशल बाण चलाने का। तो माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है, तो शंतनु देखते हैं कि ये गंगा देवी है, उसके साथ में छोटा सा बालक है, क्योंकि वो अपने बालक को जाकर बृहस्पति से ज्ञान दिलाती है और परशुराम से सब युद्ध कौशल सिखाती है, मतलब जितने भी शस्त्र अस्त्र है उसका ज्ञान परशुराम से, और जितने विद्याएं हैं बृहस्पति से, मतलब इस वर्ल्ड में उससे बेहतर कोई टीचर नहीं हो सकता है उन चीज़ों के लिए, बेस्ट टीचर, उससे बेस्ट टीचर से देवताओं के लोक में जाकर उनको सिखाकर वापस लाके अपने पति को दे देती है और खुद चले जाती है वापस। उसका नाम है देवव्रत। फिर वो देवव्रत बड़ा होता है, बड़ा वीर होता है वो, उसके अंदर बचपन से इतना कुशल है युद्ध कौशल का, वो इतने वरदान प्राप्त करता है कि उस समय का वो व्यक्ति विश्व का सबसे बड़ा अपराजित योद्धा रहता है, किसी भी स्थिति में दुनिया में कोई भी व्यक्ति उनको हरा नहीं सकता है, ऐसे व्यक्ति थे वो। सोच सकते हैं आप, कभी भी नहीं हारेंगे वो किसी भी युद्ध में, किसी भी प्रकार के, चाहे जितना युद्ध सामने आ जाए, चाहे जितना सैन्य सामने आ जाए, चाहे कितने शस्त्र सारे सामने आ जाए, पैदल आ जाए, हाथीधारी आ जाए, हस्ती दल, पैदल, घुड़दल, हाँ घुड़सवारी, सब कोई भी उसको खत्म नहीं कर सकता है। तो फिर वो बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, दिग्विजय करता है। विष्णुदेव का, दिग्विजय का वर्णन भी आता है, विष्णुदेव का वर्णन काम्यवान की लीला के साथ में जुड़ा हुआ है, जब वो भी वो कथा लंबी बोलते हैं, वो जब भगवान ने 3,000 कन्याओं के साथ विवाह किया ना, राजा बिमल की 3 करोड़ कन्या के साथ विवाह किया, उसमें जब वो वरदान मिला होता है राजा बिमल को कि आपका जो जमाई है वो ये 3 करोड़ कन्या जो है वो विवाह करेगा, वो व्यक्ति नीले रंग का होगा, पीताम्बरधारी होगा, मोरपंखधारी होगा, मुरली बजाता होगा, ऐसे सब वर्णन दिया उसका, 4 भुजाएं होगी उसकी। तो दूत जब आया देखने के लिए यहाँ पर, तो उनको 2 भुजा दिखी, वो भी कृष्ण भगवान, तो दोबारा चला गया वो राजा को बोलने के लिए, सब कुछ वर्णन मिला लेकिन वो 4 भुजा के बदले 2 भुजा मिली। तो उस समय वहां पर भीष्मदेव दिग्विजय करने के लिए आए थे, और राजा विमल बहुत भक्त राजा थे, तो युद्ध नहीं हुआ तो मित्रता से बैठे, खाना पीना खाया, तब वो गुप्त रूप में उसको पूछते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे मेरे बेटियों के बारे में नारद मुनि ने एक बार वरदान दिया था, ऐसे ऐसे मेरे होने वाले बेटियों के दुल्हे का वर्णन किया था, वो गए और ढूंढ के आए तो उनको चार भुजा वाला मिला, दो भुजा वाला नहीं मिला, नहीं दो भुजा वाला मिला, चार वाला नहीं मिला और चार का वर्णन था। तो भीष्म देव उस ऋग्विजय के चक्र में उनको समझाते हैं कि बहुत ही गोपनीय बात है, वो चार भुजा वाले ही थे लेकिन देवकी की इच्छा के अनुसार दो भुजा वाले हो गए और वही दो भुजा वाले भगवान वहाँ से फिर उनको गोकुल में छोड़ा गया, वहाँ से वृंदावन चले गए और अभी वो खेल रहे वहाँ पर, लेकिन वो वही है। तो आप निश्चिंत रहना, आप दो भुजा की चिंता मत करना, ये गोपनीय बात है बड़ी, कंस से छुपाए रखने के लिए ये सब कुछ भगवान ने खेल खेला है। तो वहाँ पर भीष्मदेव का कनेक्शन आता है और वो दिग्विजय चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करके दिग्विजय राजा बन जाते हैं। बीच में देखते हैं अपने पिताजी बड़े उदास बैठे हुए हैं, बोले क्या हो गया, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ तो है। तो फिर देखते हैं कि वो जाके नदी किनारे बैठ जाते हैं ऐसे उदास होकर, दूर से निहारते रहते किसी को, तो ढूंढते किसको निहार रहे हैं। तो एक मत्स्यगंधा यानी कि जिस शरीर से जिसकी मछली की खुशबू आती है, नाव चलाती है यहाँ से वहाँ पार, उसको उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं उसको। तो समझ में आता है कि इसका कुछ प्रॉब्लम है। तो जाके उससे मिलते हैं, क्या हुआ? तो कहते हैं कि आपके पिताजी ने हमको प्रपोज किया था शादी के लिए। तो हमने कहा हमारे पिताजी से बात करो। तो पिताजी के पास गए तो दाशराज उसके पिताजी, हाँ उसका नाम सत्यवती मत्स्यगंधा, पिताजी का नाम दाशराज। वो कहते हैं कि ये मैं तैयार हूँ आपके साथ विवाह करने के लिए, बेटी का मेरे, एक शर्त है हमारी, लेकिन हमारे बेटे की कुंडली में लिखा है कि वो राजा की पत्नी रानी बनेगी। बोलो मैं राजा हूँ, एकदम परफेक्ट मामला है, लेकिन बोलते हैं ये हमारी और एक समस्या है, हमारी ये इच्छा है, उसको तो कुंडली में लिखा है तो रानी बने गई वो, लेकिन हमारी ऐसी इच्छा है कि उसका बेटा भी राजा बने, उसके अपना एक उसका खुद का प्रपोजल है। तो वो कहते हैं कि देखो मेरा ऑलरेडी एक पुत्र है, बहुत वीर और ज्येष्ठ पुत्र है मेरा, योग्य है, युवराज है मेरा वो, तो वो राजा बनेगा तो फिर मैं, नहीं नहीं आप पहले वादा करो कि इसका वो बेटा होगा वही राज्य करेगा। तो राजा हाँ बोल लेता है उसको, मतलब भीष्मदेव दिव्य देवव्रत का जो अधिकार है उसको भी काट देता है, बोला ठीक है करूंगा। लेकिन दाशराथ बहुत होशियार होता है, वो कहता है कि ठीक है अभी आपने कहा कि इसका बेटा हो जाएगा, लेकिन जब देवव्रत का बेटा पैदा होगा तो ज्येष्ठ होगा ना, फिर वो देवव्रत का बेटा अगर राजा बनेगा तो मेरे राजा का परंपरा खंडित हो जाएगा, मतलब आपने कहा इसलिए मेरा बेटे का विवाह आपसे होगा, उसको जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, लेकिन जब उसका बेटा होगा और देवव्रत का भी बेटा होगा तो देवव्रत ज्येष्ठ, उसका पितृ ज्येष्ठ बनेगा, फिर ये परंपरा खंडित हो जाएगी, नहीं आप वादा करो कि नहीं उसका बेटा भी राजा बनेगा। ये सब कौन बता रहे हैं, ये सब दाशराज और वो कन्या बता रही कि ऐसे ऐसे मामला हुआ। तो फिर राजा बोले इतना तो अन्याय मेरे बेटे पर नहीं कर सकता मैं, हमेशा थोड़ा गलत बता रहा हूँ आपको, उसने अपने बेटे का ही अन्याय करना छोड़ दिया, बोला नहीं मैं देवव्रत को निकाल कर आपका बेटे को राजा नहीं बना सकता, वो चला आया घर पे। तो तब भीष्म देवव्रत जाके इंक्वायरी कर रहे हैं तो उनको बताया कि आपकी वजह से ना उन्होंने नकार दिया हमको, इसलिए उदास रहते, लेकिन ये इसका कारण ये है। तो भीष्मदेव कहते कोई बात नहीं मैं तुरंत हाँ हूं, आपका बेटा जो होगा मेरे पिताजी के साथ वो राज करेगा। तभी उसको बोलते हैं वो देवव्रत को कि आप ऐसा भी वादा करो कि आपका बेटा भी राजा नहीं होगा, इसका बेटे का बेटा राजा होगा आगे, ये तो होगा ही। तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा होगा ही नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर मामला ही प्रश्न ही उठेगा नहीं कि मेरा बेटा झगड़ा करेगा, मैं मर जाऊंगा मेरा बेटा फिर वाद विवाद खड़ा करेगा, मैं अभी वादा करता हूं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, एक तो राजा नहीं बनूंगा युवराज के रूप में आगे जाकर, और एक विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पुत्र भी नहीं हुआ और मेरा पुत्र विवाह वो राजा बनने का सवाल ही नहीं उठेगा। फिर ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा करता है वो, हमको अभी कथा सुन रहे बोला कितनी सिंपल प्रतिज्ञा है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन खुद को आप सोच के देखो, आप युवराज हो, वीर हो, योग्य हो, विद्या संपन्न हो, यज्ञ कौशल युद्ध कौशल संपन्न हो, सद्गुण संपन्न हो, श्रेष्ठ हो, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, और आपका एक हक छीना जा रहा है और आपके आगे का विवाह का हक भी छीना जा रहा है, और सबको हक छीने जा रहे हैं, कितना बड़ा त्याग किया है, एक पिता को खुशी देने के लिए, वो भी कोई आध्यात्मिक भगवान नाम को खुशी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर पिता को तपस्या करनी है, भगवान नाम प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। पिता को तो केवल सुंदर स्त्री का भोग लेना है। तो वो ये जब बोला कि एवरीथिंग ओके, आप बोलो खाली, हाँ पिताजी, पिताजी का दुख मुझे दिखा नहीं जाता, उदास बैठे रहते हैं, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, तो हाँ राजी हो गए। तो शंतनु इतने प्रभावित हो गए, अरे मेरा बेटा जो इतना प्रतिज्ञा करके, ऐसा कहते हैं कि जब वो कहता है ना कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो आकाश में दुंदुभियां बजती हैं, जैसे कि बिजली कड़कती है, धाड़ 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 धाड़, सब देवता लोग पुष्प वर्षाव करते हैं। इतना भयंकर तपस्या प्रतिज्ञा आज तक कोई नहीं किया है। फिर वो पिताजी उसको वरदान देते हैं कि तुम्हें इच्छा मरण का वरदान देता हूं, तुम कभी नहीं मरोगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम मरोगे। अब यह भी अद्भुत चीज है, आप बोलेंगे जो व्यक्ति एक औरत के पीछे लगा हुआ है उसके वरदान में इतनी शक्ति कैसे आ सकती है? अरे ये सब हमारे से लोग नहीं है, सब देवीय लोग हैं। इतने वो सद्गुणी सत प्रवृत्ति राजा थे कि भले उनका हृदय किसी स्त्री के ऊपर आता हो, लेकिन उसका जो अंदर का सत्व है वो नष्ट नहीं होता है। वो वरदान की वजह से भीष्मदेव, उनका नाम पड़ा भीष्मदेव, जब प्रतिज्ञा किया, भीष्म प्रतिज्ञा मतलब भीषण प्रतिज्ञा, ऐसा किसी देवता ने भी आज तक किया नहीं है, इसलिए उसका नाम भीष्मदेव पड़ा, उन्होंने इतना भीषण प्रतिज्ञा किया। और फिर क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो वो क्योंकि वो इतने सत्प्रवृत्ति के लोग थे, इतने वरदान में उनका शक्ति था कि भीष्मदेव अमर हो गए एक तरह से, एक दृष्टि से। फिर आगे जाकर उनका जीवन पढ़ेंगे ना आप, केवल त्याग के बाद त्याग के बाद त्याग के बाद त्याग, खुद के लिए कुछ है ही नहीं उनके लिए, पूरा जीवन अष्टवसु में से एक वसु थे वो, पूरा जीवन किसी और के लिए जिया उन्होंने कभी भी, हर समय। और जब पिताजी गुजरने का समय, तो वादा किया उन्होंने कि क्रूर सिंहासन का मैं रक्षा करूंगा, इस सिंहासन पर जब तक कोई योग्य व्यक्ति परमानेंट बैठने जैसा नहीं होगा तब तक मैं देखभाल करूंगा उसकी, आई एम द केयर टेकर, चाहे कोई राजा पीढ़ियां बदलती रहे लेकिन मैं रहूंगा, कभी मृत्यु तो होने वाली नहीं है, जब तक चाहूंगा नहीं तब तक, तो पीढ़ियों तक जियेंगे। तो ठीक है, तो भीष्मदेव को पुत्र नहीं, तो फिर क्या हुआ, सत्यवती का विवाह हुआ संतनु से, तो सत्यवती को दो पुत्र हुए, एक वह चित्रवीर्य चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। तो कहते हैं चित्रांगद जो था वो किसी युद्ध में मारा गया, विवाह होने के पहले ही, नहीं विवाह नहीं, विवाह नहीं हुआ था, एक बताता हूँ आपको मैं, चित्रवीर्य विचित्रवीर्य हो गया और चित्रांगद हो गया, तो अभी उनको कन्या चाहिए विवाह करने के लिए, तो ये गए काशीराज के पास, उनका स्वयंवर चल रहा था, वो तीन कन्या थी, अंबा अंबिका अंबालिका, वो इतने वीर थे ना, अकेले घुस गए ऐसे युवराजों की सभा में बैठे, सब लोग विवाह के इच्छुक आए थे कि हमसे एक वरमाला पहनाई जाएगी, इसलिए बहुत वीर आए थे वहां पर, अरे सबके बीच में घुस गए ऐसे, और तीन कन्याओं का हाथ से पकड़ा और सीधा रथ में बिठा लिया। वो होता है एक क्षत्रियों का, उनको परमिशन दिया गया कि आप कर सकते हो, बल के ऊपर कर सकते हो, वो शास्त्रीय है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो ऐसे कर देखा, अरे कोई एक अकेला कितने लोग लेके गया, तो एकदम परेशान हो गए सब लोग, सब धनुष लेके सावधान हो गए। तो भीष्मदेव ने ना एक बाण से सब लोग को धराशायी कर दिया, मारा नहीं, गिरा दिया सब लोगों को। अभी मुझे महाभारत को सीन याद है, उसका एक बाण जाता है सबको गिरा देता है, एक तो लाक्षणिक है वो, सिम्बॉलिक है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है कि एक भीष्मदेव ने खेल खेल में सबको गिरा दिया उधर, और तीनों कन्याओं को हाथ पकड़ के रथ में बिठा दिया और जा रहे हैं वापस हस्तिनापुर की ओर। तो बीच रास्ते में पता नहीं चलता तीन कन्या को लेके आते हैं, तो सत्यवती को सौंप दे, माता ये लो, ये तीन कन्याएं हैं, तीन दो पुत्रों के साथ में विवाह कर देना उसका। तो एक बोलती है, माता मेरी समस्या है, मैंने किसी को पहले दिल दे चुकी हूँ, मैं मेरा नाम अम्बा है, मैं शाल राज को मेरा दिल दे चुकी हूँ, हमारे विवाह का भी शपथ हो गया है, तो आपने पहले बताया क्यों नहीं, बताने का मौका क्या मिला? जिस प्रकार से हमको उठा के लाया गया उसमें तो एक शब्द बोलने का मौका नहीं मिला, इतना घनघोर प्रसंग था वो, कोई बोल ही नहीं पाए। बोले कोई बात नहीं, आपको सम्मान के साथ लौटा देंगे वापस। तो लौटा दिया गया उनको। तो शाल्वा क्या बोलता है, अरे तुमको किसी पर पुरुष ने हाथ लगाकर छीन के ले गया, अभी तुम उसकी हो गई हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो वो तो दुखी हो गई बेचारी, वो वापस आ गई, बोलते शाल्वा ने मना कर दिया मुझे अभी, तो अभी तुम मुझसे विवाह करो क्योंकि तुमने मुझे हाथ लगाया है और तुमने मुझे उठा के ले गया है। मतलब मैं नहीं विवाह कर सकता आपसे, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैंने तो शपथ लेके रखी है, प्रतिज्ञा ली है मैंने। माता भी कहते हैं, मारे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप करो विवाह। नहीं माता, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध जानती हूँ आप। तो वो बेचारी गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि आपने मुझे एक तो उठा के लाया, वापस कर दिया, बीच में सुनी भी नहीं मेरी, उसने मना कर दिया, आप भी मना कर रहे हो। तो ना उसको एक्चुअली ना दो कारण शास्त्र बताते हैं हमारे, बाहरी दृष्टि से उसको बहुत क्रोध आया कि तूने मुझसे विवाह करने को मना कर दिया, मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। लेकिन अंदर से आचार्य बताते हैं कि इस व्यक्ति के निश्चय को, दृढ़ निश्चय को देखकर वो इतनी प्रभावित हो गई और सोचती है कि अभी ये तो विवाह तो नहीं करेगा और उसका आगे बहुत कष्ट होगा, उसको वो कई प्रकार के संकट आएंगे, कष्ट होगा मतलब वो शरीर के संकट नहीं आएंगे, सोशल प्रॉब्लम्स आएंगे, तो मैं तपस्या करके ऐसा रूप धारण करूंगी कि इसके मृत्यु का कारण बनूंगी, उसके दुख का अंत करूंगी। ये उसका अंदर का कारण है, बाहर का कारण द्वेष है। तो कहते हैं कि तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी, मैं जंगल में जाकर तपस्या करूंगी, ऐसा वरदान प्राप्त करूंगी कि तुम्हें मार डालूंगी। वो जंगल में जाती है, तपस्या करती है, साधुओं को इकट्ठा करती है, अपने दिल का दर्द बताती है। साधु कहते हैं कि भीष्मदेव को मनाओ आप जाके, तो साधु के भी मानती नहीं है वो। तो कहते हैं कि एक ही उपाय है उसका, इनके गुरु को बुलाया जाए, परशुराम को बुलाया जाए, उनके आदेश से कुछ होगा तो देखो कुछ हो सकता है। तो परशुराम जी को आह्वान करते वो मंत्र मंत्र बोल के, तो परशुराम जी वहाँ आ जाते हैं और भीष्मदेव को बोलते हैं कि विवाह करो उसके साथ में, अन्याय मत करो उसके साथ। नहीं विवाह कर सकता, मैंने प्रतिज्ञा लिया है, तो बोले युद्ध करो मुझसे, वो मरने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है मैं युद्ध करूंगा लेकिन विवाह नहीं करूंगा। तो ऐसा घनघोर युद्ध होता है, मेरे ख्याल से ऐसा युद्ध आज तक कभी नहीं हुआ, और ऐसा अद्भुत युद्ध था वो कि परशुराम जो इतने अजय है ना, वो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया हुआ है, क्षत्रिय की झाड़ की पत्ती उनके सामने, एक बार घूमते थे अपना परशु लेके, सबको खत्म करके लौट के आते थे, कितने कुंड बनाए खून से जो मरे हुए लोगों के, इतने वीर थे वो, उनसे सीखा हुआ शिष्य है वो। लेकिन ऐसा युद्ध करता है अपने गुरु के साथ में कि ना कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है, सारे देवतागण इकट्ठा हो जाते हैं इनका युद्ध देखने के लिए, कोई नहीं हार रहा है। आखिर में परशुराम भगवान ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्या शिष्य है मेरा, धन्य है तेरे पर, युद्ध बंद, कोई जीतने की जरूरत नहीं मुझे, तो जो इच्छा है वो कर ले, मैं प्रसन्न हूं तुम पर। तो ये देख रही है प्रेक्षकगृह में एक लड़की खड़ी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसका अंजाम क्या होता है। अभी अंजाम करने लिए जिसको बुलाया वही बोल रहा है कि तुम मत करो शादी, तो ये वो परेशान हो जाती है, निकल जाती है असहाय होकर, एकदम निराश होकर, अब मैं तपस्या करूंगी दोबारा जन्म लूंगी, तो तपस्या करती है और फिर वो अगले जन्म में द्रुपद राजा का बेटा बनकर आती है। तो कैसा बेटा बन कराती है, ना वो लड़का है ना लड़की है, ऐसा बेटा बन कराती है। तो उसको पता था कि भीष्मदेव इतने वीर है, वो नपुंसक के साथ युद्ध नहीं कर सकते, तो मैं नपुंसक बनूंगी और नपुंसक बन के उसको युद्ध में आह्वान करूंगी और फिर वो नहीं लड़ेगा मुझसे, मैं शस्त्र उठाकर उसको मार दूंगी। ये भावना से वो द्रुपद राजा के यहाँ जन्म ली थी। उसका नाम क्या है? शिखंडी। उसके पहले द्रुपद राजा ने यज्ञ किया होता है और यज्ञ में धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म होता है, याज्ञसेनी बोलते हैं उसको। तो ये उनको पता नहीं कुछ बैकग्राउंड में क्या हो रहे हैं। हाँ, किसी राजा को कन्या पुत्र हो गया क्या, अभी जो भी है ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, चित्रांगद का विवाह अंबिका से होता है, विचित्र वीर का विवाह अंबालिका से होता है, और ये शादी हो जाती है और उसके बाद में युद्ध में जाते हैं, तो चित्रांगद युद्ध में मारा जाता है और विचित्र वीर को टीबी हो जाती है, राज यक्षमा रोग हो जाता है और वो एक दिन मर जाता है जवान अवस्था में, एक युद्ध में एक बीमारी में, और किसी पत्नी को पुत्र दिए बिना दोनों मर जाते हैं। राज्य कौन चलाएगा? ये तो ब्रह्मचारी बैठा हुआ है, इनको पुत्र नहीं हुआ, विवाह तो करा दिया उसने लेकिन पुत्र ही नहीं हुआ, तो अभी क्या किया जाए माता, क्या किया जाए? तो माता कहती है मेरा एक पुत्र है। देखो कैसा कहानी है, अद्भुत कहानी एकदम। जब मैं वो बोट चलाती थी ना समुद्र नदी में, एक बार नदी के बीच में चली गई तो अचानक बादल आके मुझे कवर कर लिया, और उसमें ये प्रकट हो गए, पूरा बादल से कवर कर लिया और मुझे पुत्र दे दिया वहीं पर दिव्य तरीके से। वो नहीं कि कोई रेप किया या ऐसा कुछ बलात्कार किया, ऐसा नहीं, मैं देवताओं की इच्छा से मैं आया हूँ, भगवान की इच्छा से आया हूँ। और पराशर मुनि आते हैं उधर, पराशर मुनि इतने बड़े तपस्वी हैं, उनका उधर गुफा है हिमालय में, उधर मैं अभी जाके आया एक महीने पहले, तपस्थली है उनकी पराशर मुनि की। वो जो श्लोक है ना, क्या श्लोक है वो, भगवान के छह ऐश्वर्य के बारे में जो श्लोक आते हैं ना, वो पराशर संहिता में आता है। ऐश्वर्यस्य यशस्य वीर्यस्य, छह भगवान के जो ऐश्वर्य का श्लोक उन्होंने लिखा है पराशर संहिता। इतने दिव्य ऋषि थे वो भगवान की इच्छा से प्रकट हो गए, अपने योग बल से एक बादल तैयार किया, उसके अंदर अपने आप को छुपा लिया उसके साथ में, और तुरंत उसको पुत्र दान दे दिया, वो है व्यासदेव। बोले जगत का पूरा ज्ञान जो है वो लिखने के लिए इनका अवतार हुआ है। और वो कैसे है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जन्म हो गया चले गए वो उधर से, कोई माता को दूध पिलाना है कुछ करना है ऐसा कुछ नहीं, खाली उनका पुत्र है बस इतना ही। तो जानती थी कि मेरा पुत्र एक है हिमालय में तपस्या कर रहा है, भगवान का अवतार है, उसको ही बुलाया जाए और उसके योग बल से इनको पुत्र प्राप्ति कराई जाए। तो वो आता है क्योंकि व्यासदेव को बुलाते, व्यासदेव क्या आ जाए आज्ञा है माता, बोले इनको पुत्र दिलाओ, बोले ठीक है। तो एक जाती है अम्बालिका उनसे मिलने, तो देखकर ऐसा सफ़ेद पड़ जाती है, पता है ना हमको जब डर लगता है ना, बहुत हमको डर लगता है तो सफ़ेद हो जाते एकदम, ऐसा खून ही खत्म हो गया चेहरे से, ऐसे सफ़ेद होकर डर के मारे वो सब जाती है उनके पास। तो व्यासदेव आते हैं, बोलते हैं जो पुत्र होगा उसको पांडु रोग होगा, एनीमिया, हीमोग्लोबिन उसका बहुत कमज़ोर रहेगा, बहुत बीमार रहेगा वो। तो फिर ये बोलते हैं तो ऐसा रोगी पुत्र जो है वो राजा बनने के योग्य नहीं होता है। तो कहते हैं फिर दूसरी कन्या के साथ में कोशिश करना। दूसरी कन्या जो होती ना वो व्यासदेव को देखकर आंख ही बंद कर लेती है, देख ही नहीं सकती उसको, क्योंकि वो ऋषि थे ना, वो दाढ़ी कठोर शरीर उनका, तपस्वी शरीर, कोई ऐसा रोमांटिक होता है ना चॉकलेट हीरो वैसा नहीं था उनका शरीर, तो तपस्वी व्यक्ति है वो, तपोबल से आया है उधर पुत्र देने के लिए, तो देख ही नहीं सकती उनको, तो आंख बंद कर लेती है। तो विष्णु व्यासदेव बोलते हैं अभी जब पुत्र होगा वो अंधा होगा, क्योंकि इन्होंने आंख ही बंद कर लिया। तो सत्यवती पास हर टाइम आता है रिपोर्ट, बोले क्या करना है, दोनों पुत्र अयोग्य हो गए। तो अभी मैं समझाती हूँ जरा उनको अच्छी तरह से, जरा काउंसलिंग करती हूँ, जरा मैरिज काउंसलिंग ठीक से समझाती हूँ कि देखो राज्य के हित के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सब काउंसलिंग सुन लेती है, हाँ हाँ माता, हाँ अगली बार कोशिश करेंगे, सज धज के जाएंगे, यही करेंगे वो करेंगे, लेकिन मन में ठान लिया है कि हमको करना ही नहीं है ये। वो दासी को ना अच्छा सजा कर पूरा काउंसलिंग करके उसको मोटिवेट करके उसको भेज दे रहे। तो व्यासदेव आते हैं बाद में, बोलते अब का बार जो बच्चा होगा ना एकदम बुद्धिमान होगा, कोई शरीर में व्यंग नहीं होगा उसके, अतिशय बुद्धिमान, नीतिमान, धर्ममान सब होगा वो, लेकिन वो दासी पुत्र होगा। बोला ऐसे क्यों, क्या करें, दासी को भेज दिया उन्होंने तो उसका पुत्र को दासी पुत्र ने, तो और क्या कहेंगे हम, तो भी राजा नहीं बन सकता है, अभी क्या करें, अभी और तो कुछ नहीं कर सकते, मैं जाता हूँ अभी, निकल जाते हैं। तो पहला पुत्र पांडु, दूसरा धृतराष्ट्र, तीसरा विदुर। पहले धृतराष्ट्र, सॉरी पहले मैं उल्टा बताया, पहले अंधा, दूसरा पांडु और तीसरा विदुर। चालू झगड़ा चालू हो गया, बड़ा लड़का धृतराष्ट्र बोलता है मैं बड़ा हूँ, लेकिन जनता और ब्राह्मण बोल रहे हैं कि तुम अंधा है, तुम राजा नहीं बन सकता है। तो अंधे से पांडु रोगी ठीक, तो पांडु चलेगा लेकिन अंधा नहीं हो सकता राजा, तो बड़ा गुस्सा आया उसको। वहीं से इनका दुख शुरू हो गया, उनके जीवन का जो कष्ट था ना वहीं से शुरू हो गया, क्या नियति की इच्छा के अनुसार। फिर पांडु राजा बेचारा बड़ा हो गया और एक दिन जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, तो एक हिरण को, दोनों को बाण मार दिया, दो हिरण को बाण मार दिया। उस समय वो हिरण हिरनी जो है ना, वो अपना संबंध कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए। जैसे बाण लगता है तो हिरण हिरनी के शरीर में से ब्राह्मण ब्राह्मणी पैदा होते हैं, ऋषि और ऋषि की पत्नी, वो मर जाते हैं बिकॉज क्योंकि बाण लगता है ना उनको, उनका बाण तो ऐसे कर्ण भेदी, मतलब क्या शब्द भेदी बाण रहता है उनका, आवाज से, आवाज का लक्ष्य भेद कहते हैं उसको। तो मरना तो है उनको, तो मरने के बड़े श्राप देते हैं कि तुम भी जब तुम्हारे पत्नी के पास जाओगे पुत्र प्राप्ति के लिए तो मर जाओगे। ये राजा का विरक्ति आती है, अभी तो पत्नी का संबंध ही नहीं, जीना है तो पत्नी को रख के भी क्या फायदा है, तुम्हें जा रहा हो जंगल में। तो पत्नियां बोलती हैं कि हम भी चले आपके साथ में। दो पत्नियां होती हैं, एक कुंती और एक माद्री, एक मद्र राज की कन्या और एक कुंती देवी, कुंती भोज की। जंगल में आते हैं, जंगल में रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं क्योंकि इनको तो भोग तो लेना नहीं है। एक दिन वहां पर माद्री जो है वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, नदी में स्नान करके आ रही थी गीले कपड़े पहनकर। तब ये ध्यान से आके खुलता है तो अपने गीले कपड़े वाले पत्नी को देखता है, तो उसका अंदर काम वासना जागृत होती है, उसको अपने गोद में लेता है, तुरंत वो मर जाता है। कितनी समस्या देखो, एक के बाद समस्या। जैसे ही ये जंगल में जाता है विरक्त होकर धृतराष्ट्र को राजा बना देते हैं, दासी पुत्र को तो कतई इधर बना सकते नहीं है, तो अंधे को राजा बना देते हैं। अभी पहले पुत्र जो है वो पांडु को, पांडु क्या बोलता है मरने के पहले की बात है कि देखो मुझसे तो आपको पुत्र नहीं होंगे, हो ही सकते नहीं। तो कुंती को 5 वरदान मिलते हैं, दुर्वासा मुनि की बचपन में सेवा करती हो अपने पिताजी के घर पे। तो 5 वरदान क्या मिलते हैं कि 5 मंत्र दूंगा आपको मैं, और किसी भी एक मंत्र से आप किसी भी देवता को पुकार सकते हो, दास बनकर देवता आएगा आपके पास और आपको पुत्र देकर जाएगा। कितनी शक्ति होगी उसके अंदर, जो चाहे देवता को बुला सकते हैं उस मंत्र को पुकार कर, वो मंत्र का दास होगा देवता, वो उसका नाम लेकर वो मंत्र लिया जाएगा, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक होगा, उसमें उस देवता का नाम होगा, वो देवता का नाम लेकर मंत्र को जपा तो तुरंत देवता आ जाएगा और पुत्र देकर चला जाएगा। तो पांडु कहता है देखो पुत्र तो होगा नहीं आपको मुझसे, आप मंत्र जप लेना और पुत्र प्राप्ति कर लेना। तो कुंती देवी फिर मंत्र जपती है, तो पहला धर्मराज को बुलाती है, दुष्ट का जन्म होता है, वायुदेव को बुलाती है, भीमसेन का जन्म होता है, फिर इंद्र को बुलाती है, फिर उसका अर्जुन का जन्म होता है, फिर उसको अपने सौतन की याद आती है, अरे उसको भी तो बेटा चाहिए, उसको तो मंत्र दो, एक मंत्र जो एक दो मंत्र उसको दे देती, सॉरी एक मंत्र उसने पहले यूज कर दिया है तो कर्ण का जन्म हो चुका है, 4 मंत्र बाकी है, एक मंत्र किसी को पता नहीं, गुप्त है, एकदम पति को भी पता नहीं, तो 3 मंत्र यूज कर लेती है, एक मंत्र बचता है तो वो माधुरी को देती है। तो माधुरी क्या करती है, अश्विनी कुमार जो जुड़वा देवता है ना, उनके लिए एक मंत्र काफी है, वो बोलती है, दोनों आते हैं और 2 पुत्र देते हैं, नकुल सहदेव और वो माधुरी के पुत्र हैं। और उसके बाद में फिर जब वो स्नान करती होती तभी उसको देखकर वो उसका मृत्यु हो जाता है। कैसी स्थिति है देखो आप, और इस बीच में राज्य पर कोई नहीं है, अंधा भी है तो भी वो बैठे हुए हैं भीष्मदेव देख रहे हैं सब कुछ। अभी इधर दो युधिष्ठिर का जन्म हुआ ना, वो धृतराष्ट्र का शादी जो है वो गांधारी से हुआ, गांधारी जो देख कंदहार है ना अफगानिस्तान, वहां की राजकन्या थी, तो उसका विवाह करा दिया अंधे के साथ में, बहुत उसमें बहुत भी गड़बड़ हो गया, बहुत लड़की वालों को बहुत मतलब एक्चुअली चीटिंग ही कर दिया उन्होंने, एक तरह से ऐसे मनाया उनको कि कुरुवंश का राजा है वगैरह वगैरह करके। तो शकुनी को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि मेरी इतनी सुंदर बहन को अंधे के साथ निकाह कर दिया उसका, तो कहते कि मैं भी कुरुवंश का नाश करूंगा, मैं उधर जाके अभी शिफ्ट हो जाऊंगा, ऐसा काम करूंगा कि ये सबका वंश नष्ट कर दूंगा पूरा मैं। तो वो दिखता कैसे है महाभारत में कि वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वो कुरुवंश का नाश करने के लिए वहां पर आया होता है, दुर्योधन को भड़का के फुसा के ये करके वो करके कैसे भी करके सर्वनाश इनका हो जाए, इसलिए वो दुरुपदेश उनको करते रहता है हमेशा। लगता कैसे कि दुर्योधन का मामा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो सबका नाश करने के लिए वहां पर आया रहता है। तो याद युधिष्ठिर को जन्म होता है, उसके बाद में जन्म होने के टाइम पे इधर गंधारी गर्भवती है, तो उसको लगता है कि मुझे पहले बच्चा क्यों नहीं हुआ, अभी किसका बच्चा युवराज बनेगा। तो वो पेट पर ना वैफल्यग्रस्त होकर पेट को ऐसा मारती है तो उसका एबॉर्शन हो जाता है। तो जो मांस गिरता है उसके 100 टुकड़े कर देते हैं, 100 टुकड़े में से एक एक पुत्र जन्म लेता है एक ही साथ सब लोग। लेकिन फिर भी सब लोग युधिष्ठिर से सब छोटे हैं, सबसे बड़ा दुर्योधन है लेकिन वो भी छोटा है युधिष्ठिर से। वहीं से वाद शुरू होता है कि मैं तो राजा बन गया लेकिन अगला राजा कौन बनेगा, मेरा पुत्र बनेगा कि पांडु का पुत्र बनेगा। ये पूरा जो है ना पॉलिटिक्स, ये संघर्ष जो है ना, ये पूरा भीष्मदेव जिंदगी भर सहते हैं। तो ना कोशिश करते समझाने का कि नहीं, लेकिन वो बोलता है मुझे बनना है, बोलता नहीं मुझे बनना है, मैं तो बने हुए राजा का बेटा हूँ, तुम तो छोड़ गए राजा का बेटे हो, नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ, और मैं बोलता मैं छोटा हूँ और तुम्हें नहीं, मैंने नहीं, वो राजा का बनने के योग्य है, लोकप्रिय है, ये दुष्ट है, नहीं नहीं मैं योग्य हूँ, मैं युवराज हूँ, ऐसे संघर्ष चलते रहता है। इस बीच में एक ही सोचता है दुर्योधन कि मैं ना इन सबको मार दूंगा, एक बार खत्म कर दूंगा तो समस्या ही नहीं बचेगी। तो भीमसेन को विष खिलाता है, लक्षाग्रह में जलाने का प्रयास करता है। तो ये तो लंबी कहानी है, पूरा महाभारत बताना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य एक है, ये सारी चीज़ों का जो आंखों देखा हाल भीष्मदेव को देखना पड़ा, और वो इतने असहाय थे कि इतना समझा बुझाने पर भी दुर्योधन ने कभी नहीं माना, न शकुन ने नहीं माना, और कभी भी वो इनको समझाने में और कितना भी कुशल होने पर भी समस्या का समाधान ढूंढने में वो सफल नहीं रहे, दुर्भाग्य से। चाहते हुए भी इतने बड़े व्यक्ति थे, अरे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आएगा लेकिन सुनने वाले को सुनना ही नहीं तो क्या कर सकता है वो बेचारा। इतना परामर्श करने वाले विदुर थे वहाँ पर, इतने विद्वान स्वयं भीमसेन भीष्मदेव थे, इतने सत्संगी और सद्गुण संपन्न पांडव थे, लेकिन क्या कर सकते वो, कुछ नहीं कर सकते। और ये पहली पीढ़ी से कष्ट भोगते आ रहे हैं, पहले खुद की पीढ़ी उनमें कष्ट हुआ, विवाह नहीं करा, दूसरी पीढ़ी मर गए, उसके बाद में ये अंधा एक रोगी और एक दासी पुत्र हुआ, उसके बाद उनके पुत्र हुए, उनके अंदर झगड़े हुए, और ये कहानी इतनी आगे बढ़ी कि युद्ध का हो गया कि अभी युद्ध ही करना पड़ेगा। इतनी सुलह करने का प्रयास किया भगवान ने, कोशिश किया, बीच में वस्त्रहरण करने का प्रयास किया सुंदर बीवी का पांडवों के, ये जलाने का प्रयास किया कि विष खिला दिया, क्या क्या हुआ, क्या क्या देखना पड़ा उनको, घर के अंदर क्या क्या हो रहा है, अपने ही बच्चे क्या कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। और फिर युद्ध का ठहरा हो गया तो उनको उनका पक्ष लेना पड़ा, इच्छा के खिलाफ भी, सबसे बड़ी तपस्या थी लेकिन लेना पड़ा, वो भी बड़े दास्तान है। और अंतिम में ये सब कुछ करते हुए वो भगवान के श्रेष्ठ भक्त बने रहे, बड़े दिव्य भक्त थे भगवान के, वो धर्मशील थे बहुत, भगवान के परम भक्त थे वो, हर रोज सवेरे कई घंटों ध्यान करते थे वो कृष्ण भगवान के ऊपर, और भगवान के इतने शरणागत थे कि विश्व को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए भगवान की इच्छा से विपक्ष में उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया। और इतना एक ही प्रसंग उनका है जिसको भगवान कितने उनको चाहते थे, ये उसका प्रमाण है। वो युद्ध जब हुआ तो 9 दिन तक भीष्मदेव सेनापति थे, मतलब वो उनके सेनापति बना दिया उनको। भीष्मदेव सेनापति हो तो हारने का सवाल ही नहीं उठता है, चाहे युद्ध 100 दिन हो, 200 दिन हो, या 2 दिन हो, जीत तो हमारे एक होगी, इनको कोई मार ही सकता नहीं है, और जब तक ये जीवित है तब तक ये विजयी है। तो उसको बना दिया भीष्मदेव को। तो 9 दिन तक ना भीष्मदेव ने अपने पराक्रम से पांडवों की आधी सेना को समाप्त कर दिया, 3.5 अक्षौणी सैन्य को खत्म कर दिया उन्होंने 9 दिन के अंदर, इसे काटते ही जा रहे, बस कोई सामने टिकेगा ही नहीं उनके। तो फिर 9वें दिन में ऐसी मीटिंग होती है शाम को युद्ध के बाद, क्या किया जाए अभी इनका, कैसे रोका जाए उनको। तो कृष्ण बोलते हैं हाँ मैं उसी दिन की याद वेट कर रहा हूँ कि आप मुझे कब पूछोगे इसकी, मैं कैसे अपने आप बोलूँ, आपको ही पूछना चाहिए ना, ठीक है बताओ अभी क्या करें इनका। बोले देखो जब तक ये नहीं हटते हैं तब तक तुम्हारा युद्ध जीतने का कोई चांस नहीं है, तो क्या करना चाहिए जाके उनको पूछो कैसे मार सकते हो उनको। इतना प्रेम जिनके गोद खेले थे बचपन में, उन पर ये प्रसंग आया पूछने का, मैं क्या कर धर्म के राज्य के लिए करना पड़ेगा, तो गए पूछने के लिए। तो कहते हैं उस दिन भीष्मदेव इतने खुश हो गए, बोले इसी दिन का वेट कर रहा था मैं कि कब मुझे आप पूछोगे कि मुझे कैसे मारा जाए और मैं आपको बता दूं मुझे कैसे मारना है। मैं आपको कोई आके बोलेगा कि प्रभु जी कैसे मार दें आपको, कैसे मृत्यु हो सकती है आपके, बताओ ना जरा। आप बोले मेरा शत्रु से बड़ा शत्रु है ये आदमी, पहले उसको ही मारना चाहिए, ऐसे विचार मन में कैसे आ सकता है आपके। लेकिन ये आदमी खुशियां मना रहे, वाह आज मुझे आपने पूछा बड़ी खुशी, मैं बताता हूँ आपको मुझे कैसे मारना है। द्रुपद का बेटा शिखंडी है, उसको सेनापति बनाओ, नहीं मतलब उसको मेरे को आह्वान करने को बोलो। जब वो आह्वान देगा मुझे सावधान करके, जब मैं देखूँ अरे शिखंडी आया है, तो मैं तुरंत शस्त्र को डाल दूंगा नीचे, उसके बाद मेरे पर बाण चलाना और मुझे गिरा देना। तो होता है तय होता है, शिखंडी का उसी दिन का इंतजार कर रहे ना वो, कि उस दिन जिस दिन मैं जाऊंगा आह्वान करने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिखंडी सामने आता है, उसके पहले की बात बता रहा हूँ मैं, उसके पहले उसके पहले अर्जुन के सारथी बनकर भगवान युद्ध कर रहे हैं। तो एक दिन भीष्मदेव बोलते हैं मैं ऐसा युद्ध करूंगा ना, ये भगवान ऐसा जर्जर करूंगा अर्जुन को, ऐसा परास्त कर दूंगा, ऐसा त्रस्त कर दूंगा कि भगवान शस्त्र लेने पर मजबूर हो जाएंगे। तो एक दिन बीच में ऐसा युद्ध करते हैं भीष्मदेव, ऐसा अर्जुन को परास्त मतलब परेशान कर देते हैं कि भगवान को रहा नहीं जाता है। भगवान कूदते हैं अपने रथ से, सब कूदते हैं, नीचे गिरा हुआ रथ का जो पहिया है उसको उठाते हैं और चक्र की तरह घुमाने लगते हैं और भागते हैं भीष्मदेव की ओर, और रथ से कूद कर अर्जुन भागते हैं, उनको पकड़ते हैं, नहीं भगवान नहीं, आपका तो वादा है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भगवान शस्त्र को उठा रहे हैं क्योंकि भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं शस्त्र उठाने के लिए उनको मजबूर करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। तो भगवान उसका अपने भक्त का शब्द पालन करने के लिए, उसका शब्द सच होना चाहिए, मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे भक्त का दिया हुआ वचन जो है, जो भी कुछ कहा है उसने, वो सत्य होना चाहिए। इसलिए अपनी प्रतिज्ञा का अवमान करके भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए शस्त्र उठाते हैं। तो फिर भी उसको अर्जुन बहुत जोर से रोकता है, नहीं नहीं भगवान नहीं। उस वक्त जैसे भगवान उसके सामने चक्र लेकर आ रहे हैं मारने के लिए, उसमें अर्जुन भीष्मदेव जो है ना अपने शस्त्रों को छोड़ देता है, बोले मारो मुझे, इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं। वो जो था ना भगवान का स्वरूप, जिस भगवान का मुकुट गिरा हुआ है, भगवान के बालों में जो है ना वो धूल जमी हुई है, भगवान के शरीर पे कई जगह खून के निशान बाण लगे हुए हैं, क्योंकि सारथी को बाण मारते हैं ना हमें सब लोग, तो खून के निशान भी लगे हुए हैं, धूल बनी हुई है, क्रोधित है भगवान अपने भक्त के प्रेम के, अर्जुन के प्रेम की वजह से चक्र लेकर अपना प्रतिज्ञा तोड़कर मेरे सामने आ रहे हैं। इस दृश्य को देखकर अर्जुन भीष्मदेव इतना अपने आप को धन्य मानते हैं कि मेरे जीवन का सर्वस्व प्राप्त हो गया मुझे आज, कि देखो देखो मेरे भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा बनाए रखने के लिए, अपने भक्त के प्रेम के लिए देखो कैसे शस्त्र उठाकर आ रहे हैं मेरे पास, अब मैं मरने को तैयार हूं, मैं मारो मुझे। तो ये दृश्य जो है ना, ये भगवान और भीष्मदेव के प्रेम का एक लक्षण है, मतलब क्या कहते हैं उसका, एग्जीबिशन है उसका, किस रूप से भगवान ने एक योद्धा के लिए किस तरह से प्रेम व्यक्त करना चाहिए। वैसे नहीं कि गुलाब जाम खिलाओ भाई, युद्ध के पहले गुलाब जाम खा के जाएंगे, गले लग के जाएंगे, ऐसा नहीं। एक युद्ध करते हुए व्यक्ति को, वीर योद्धा को उसके अनुकूल सम्मान देने के लिए भगवान ने उसके तरीके से अपना प्रेम व्यक्त किया। और जब भीष्मदेव का मरने का समय आता है ना, तो आगे की कथा है एनीवेज। तो अब अर्जुन उसको मारने को मना कर देते हैं, फिर भगवान फिर शांत हो जाते हैं, अपना चक्र छोड़ देते हैं, फिर वापस रथ पे सवार होते हैं, और फिर ये प्रसंग आता है उनको मारने वाला, फिर शिखंडी सामने करते हैं, फिर भीष्मदेव को पीछे से अर्जुन बाण लगाते हैं, और भीष्मदेव कहते हैं मैं जानता हूं शिखंडी के बाणों में इतना बल नहीं कि मेरे शरीर को छेद सके, जो बाण मेरे शरीर को छेद रहे हैं वो अर्जुन के बाण हैं, मैं जानता हूं। वाह अर्जुन वाह, आज मैं धन्य हो गया, तुम्हारे बाणों से मेरे शरीर की छलनी हो रही है। ये योद्धा का प्रेम है, योद्धा है वो लेकिन प्रेम भी करता है अपने अर्जुन पर। तो अर्जुन के हाथों से बाण खाकर शरीर की छलनी हो रही है, पर अपने आप को भाग्यवान समझता है कि शरीर भी धन्य है जो अर्जुन के बाणों से बेधा जा रहा है। फिर आगे बाण मार के उसको गिरा देते हैं और युद्ध से बाहर हो जाते हैं। फिर देखिए आप, मरना तो इच्छा से है ना, क्यों नहीं मर रहे हैं बताओ? अभी टाइम तो आ गया उनका, अभी मर सकते थे वो, लेकिन फिर भी नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? उन्होंने अपने माता पिता को वादा किया था कि जब तक कुरु सिंहासन पर सही योग्य व्यक्ति राजा बन करने आएगा तब तक मैं नहीं मरूंगा नहीं। अभी युद्ध समाप्त कहाँ हुआ है? अभी तो युद्ध जब जीतेंगे राजा बन के तब जाकर मैं चैन की सांस लूंगा, तब जाकर मरूंगा। अभी तो चल रहा है युद्ध, अभी तो पहले मैं मरा, अभी तो बहुत सारे लोग बाकी हैं, अभी तो पता नहीं विजय किसकी होगी, मुझे मरना है कि नहीं मरना है। तो एक तो आगे 9 दिन युद्ध हुआ, उसमें 9 दिन में क्या क्या हुआ तो बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद में वो वापस चले गए, फिर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, फिर हैंड ओवर हो गया, फिर वो इंद्रप्रस्थ में उनका प्रवेश हो गया। तब तक ये उधर ही पड़े हैं अकेले रणभूमि पर, ना जल पी रहे, ना पानी पी रहे, ना कुछ नहीं कर रहे हैं, उधर पड़े हुए हैं, प्राण को अपने हड्डियों में बसा कर रखे हुए हैं। एक एक दो बाणों के बीच में एक उंगली भी प्रवेश कर सकती नहीं, इतने बाण लगे थे उनके अंदर, इतने बाण कि दो बाणों के बीच में एक उंगली भी नहीं प्रवेश कर सकती है। तो कितना खून बहा होगा और कितना दर्द हुआ होगा उनको, उतना सारा दर्द करने की, सहन करने की शक्ति उनके अंदर थी, और जीवित रहे वो ऐसे ही क्योंकि वो भगवान का इंतजार कर रहे थे। उनको खबर मिल रही थी कभी युद्ध ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ। उन्होंने क्या किया, जैसे जहाँ पर गिरे ना वो, उसको युद्ध भूमि से अलग कर दिया, मतलब यहाँ पर युद्ध नहीं करना, आगे युद्ध करना है, तो वो उनके लिए आरक्षित कर दिया। उधर से वो पड़े रहे, रोज शाम को सुनते थे क्या हो गया। तो एंड में मालूम पड़ा कि दुर्योधन का भी वध हुआ, अभी युधिष्ठिर राजा बनेंगे। अभी वो संतुष्ट थे, मरने को तैयार थे, फिर भी क्यों नहीं मरे? क्योंकि वो भगवान का दर्शन करना चाहते थे। पहले कारण तो राजा तय नहीं हुआ था इसलिए नहीं मरे, राजा तय हुआ तो क्यों नहीं मरे? क्योंकि भगवान का दर्शन करना था, भगवान के भक्त थे ना वो, भगवान भी जानते थे कि मेरा प्रिय भक्त जो है वो सरशैया पर, उधर बाणों के शैया पर पड़ा हुआ है, उसको भी उद्धार करना है मुझे। लेकिन जानते थे वो कि भीष्म देव को अगर सही रूप में प्रसन्न करना है तो युधिष्ठिर को राजा बनाकर, राज मुकुट ले पहनाकर, राज दंड लेकर, पूरी सम्मान के साथ, राजा के साथ सम्मान के साथ उसको वहां पर ले जाऊंगा, तो सच्चा आनंद भीष्मदेव को हो सकता है। इसलिए उन्होंने वेट किया, उनका संस्कार किया, राज्याभिषेक हुआ, राजदंड प्राप्त हुआ, फिर सैन्य, फिर आगे पीछे सब होता ना, वो राजा का कैसा आगे सैन्य पीछे सैन्य, फिर बिगुल होता है, फिर धन्यवाद होता है, वो सब जानबूझ कर लेके। अभी कोई मरने वाले व्यक्ति का हॉस्पिटल में कोई सर्जन थोड़े आता है, हॉस्पिटल में कितने लोग मरते हैं तो उनको मिलने के लिए लोग मुकुट पहन के थोड़े आते हैं, वो सफ़ेद वस्त्र पहन के आते। हमारे हॉस्पिटल में एक व्यक्ति ने इच्छा किया था कि मुझे मेरे पोती ने मेरे बेटे का विवाह होता हुआ मुझे देखना है, तो जाने से कि वो तो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थी भक्ति विधान में, तो दूल्हा दुल्हन को दूल्हा दुल्हन के जोड़े में ही हॉस्पिटल में बुलाया आईसीयू में। ऐसे शादी हुआ वैसे ही हॉस्पिटल के आईसीयू में आए और अपने बेटे को दूल्हा और बहू को देखकर उसको आशीर्वाद दिया खूब और वो फिर चले गए। ऐसा विरला प्रसंग होता है क्योंकि इच्छा के अनुसार करते हैं। आमतौर पर मरने वाले व्यक्ति को मिलने जो आते हैं वो एकदम सादा वस्त्र पहन के आते हैं, कोई अलंकार वंकार पहनते नहीं। लेकिन भगवान ने अपने सारे लोगों को लेकर गए राज वस्त्र पहना कर ले गए पूरे ऐश्वर्य के साथ, क्योंकि जानते थे मरने वाले को बहुत खुशी होगी जिसके लिए वो इंतजार कर रहा है इस घड़ी के लिए। और भी गौरव भगवान का, भगवान ने उसका व्यक्ति प्रकट किया लोगों के लिए, बोला अर्जुन भीष्मदेव ये बड़े दुखी हैं कि इन्होंने कौरवों का संहार करके राज्य प्राप्त किया, मन में बहुत दुख है उनके कि मैं इतने भाइयों का वध करके राजा बना हूँ, ये कुछ शुभ नहीं है मेरे लिए, अशुभ है मेरे लिए, बहुत दुखी है वो कि इन सबकी हत्याओं का कारण मैं बना, मुझे राजा बनाने के लिए इतनी हत्याएं की गई, इसको जरा समझाओ आप, उसको बोध देना, ज्ञान भी देना। अभी आप बोलेंगे भगवान इतने बाण लगे हुए हैं एक भी बूंद बचा नहीं है खून का, और आप बोल रहे उपदेश करो लेक्चर दो, अभी इस समय पर कैसा लेक्चर दूं? दो उसके शास्त्र में कारण दिए हैं। एक कारण ये था कि भगवान ने उनको स्पर्श किया, और जैसे ही भगवान ने उनको स्पर्श किया उनका सारा दर्द, उनकी सारी वेदना, सारा कष्ट मिट गया, उनका एकदम चंगा हो गया वो लेक्चर देने के लिए। और एक ऐसा वर्णन दिया है कि उनके अंदर इतना सहनशीलता थी, इतना सेवा भाव था कि भगवान को देखकर कोई दर्द वर्द उनको हुआ ही नहीं है। उसी अवस्था में भी उन्होंने इतना लंबा चौड़ा अरण्य पर्व का लेक्चर दिया है। नहीं, कौन सा पर्व? भीष्म पर्व कहते हैं उसको। पूरा भीष्मदेव का जितना उपदेश है वो पूरा महाभारत के उस अध्याय में दिया गया है। क्या नहीं बताया उन्होंने? राजधर्म, स्त्री धर्म, कौटुंबिक धर्म, युद्ध नीति और सब प्रकार का ज्ञान दिया उन्होंने अपने, और सांत्वना भी दिया कि तुमने जो कुछ किया वो गलत नहीं किया, चिंता मत करना, दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप धर्म के प्रतीक हो। बहुत उसको एनकरेजमेंट दिया, प्रेरणा दिया। कोई कर सकता है कैसे बताओ? आप मर रहे हो, वो आपके गुरु आके आपको आदेश दे रहे हैं, ये काम करो, भगवान आके आपको आदेश दे रहे हैं ऐसा करो। हाँ बोले, मैं करने काबिल नहीं हूँ, मेरे को शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त के जीवन में ना कहने का सवाल ही नहीं उठता किस चीज़ के लिए। भगवान के द्वारा आदेश हुआ तो ना कहना है ही नहीं उनके लिए, पॉसिबल ही नहीं। कितना सेवा भाव होगा। आज सेवा तो सब लोग अनुकूल अवस्था में सब लोग कर लेते हैं। अच्छा प्रसाद मिला हुआ है, अच्छी नींद मिली हुई है, झगड़ा नहीं किया बीवी ने, सब ठीक ठाक है, पैसा भी ठीक से आ रहा है, तो थोड़ा बहुत सेवा हम लोग कर लेते हैं। लेकिन मरने के जगह पर जो खड़ा है उसको सेवा दी जाए, वो भी इतनी कठोर सेवा, प्रवचन करना है उसको, खुद मर रहा है या दूसरे को काउंसलिंग देना है, ऐसा सेवा किया उन्होंने। और उसके बाद में भगवान उनके चरणों के पास आए, चरण छुए भगवान ने उनके, मतलब भगवान उनके आंखों के सामने आए। तब भीष्मदेव, जो अभी मैं बता रहा हूं, भगवान कितने भीष्मदेव महान हैं, वो कहते हैं कि आपका वो रूप चाहता था, रूप जो अर्जुन को बचाने के लिए आप चक्र लेके मेरी ओर भाग के आए, बोले पूरे महाभारत के युद्ध में वो दर्शन केवल मैंने अकेले ने किया, और कोई भी अपने अपने युद्ध में बिजी थे, अर्जुन तुम्हारे पीछे थे, मैं ही तुम्हारे सामने था। और वो सुंदर दर्शन जो आपका था, वो तो देखने में सुंदर था ही स्वरूप उनका, लेकिन वो दर्शन में जो भाव था आपका, भक्त वत्सल भाव जो था आपका, कि अपने भक्त के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हो, वो देखकर मैं इतना प्रसन्न हो गया था कि वही मेरा जीवन धन्य हो गया था। आज मुझे दोबारा वही आपका रूप याद आ रहा है कि आप कितने भक्त वत्सल हो, ऐसे भगवान का गौरव कर रहे हो वो, आप कितने महान भगवान हो जो अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। आप, मैं बड़ा धन्य हूँ, बड़ा भाग्यवान हूँ कि आज आप इतनी सारी व्यवस्था छोड़कर मेरे सामने खड़े होने को आए हो, और हाथ जोड़ते हैं और भगवान का वो सुंदर स्वरूप अपने आंखों में बसाकर, आंखों में अश्रु लेकर हाथ जोड़कर जो है अपने शरीर को त्याग देते हैं। उस समय देवता लोग आकाश से वर्षा करते हैं, उसके पहले वहाँ पर गंगा देवी आ जाती है। कैसे आती है? सब लोग जमा होते हैं ना, वो लोग भी आते हैं, क्योंकि अभी लास्ट समय आ गया है, एंड ऑफ लाइफ केयर गोइंग ऑन, तो कौरव लोग भी आ जाते हैं, यहाँ पांडव बैठे, यहाँ कौरव बैठे, सबके प्रिय है वो। तो अर्जुन को वो भीष्मदेव बोलते हैं, दुर्योधन मुझे जल पिला दो। दुर्योधन बड़ा बॉस होता ना, दुशासन जाके जल लेके आ। तो भीष्मदेव बोलते हैं, अरे मैं युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ वीर हूं, मुझे वीरों की तरह जल पिलाओ। समझ में नहीं आते क्या बोल रहे हैं, अभी क्या करना है, जल तो लाना है, एक तंबू से लाना है। उतने में अर्जुन सामने आते हैं, भगवान इशारा करते हैं उसको, अर्जुन एक बाण निकालते हैं, गंगा मंत्र बोलते हैं, जमीन में बाण मारते हैं, और वहाँ से गंगा देवी प्रकट हो जाती है, और वो जो जल निकलता है गंगा जी का, सीधे भीष्मदेव के मुँह में गिरता है, और गंगा देवी भी सत प्रकट हो जाती है। वहाँ पर पुनः माता पुत्र का मिलन होता है वहाँ पर, और फिर उसके बाद भगवान सामने आकर अपना शरीर छोड़ देते हैं। पूरे देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, गौरव करते हैं कि ऐसा मृत्यु जो है ना आज तक किसी का नहीं हुआ है। एक क्षत्रिय के लिए भी श्रेष्ठ मृत्यु, एक ब्राह्मण के लिए भी श्रेष्ठ मृत्यु, हर प्रकार से समय के अनुसार। हाँ, उत्तरायण का शुरू होने के पश्चात 14 जनवरी को, मतलब जो संक्रांति के दिवस पे, उत्तरायण की शुरुआत में हर प्रकार से हर व्यक्ति के लिए आदर्श मृत्यु जो है वो भीष्मदेव का मृत्यु है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक भी उनको जीवन में खुशी प्राप्त नहीं हुई जिससे वो कह सके कि मैंने कुछ एंजॉयमेंट किया, कुछ भी नहीं। सारा जीवन, सारी शक्ति, सारी भावना, सारा समय दूसरों को अर्पण कर दिया। इसलिए वो भागवत में उनका वर्णन आता है, क्योंकि वो भगवान के बड़े महान भक्त थे। जो भी उन्होंने किया, लगता है गलत किया, अच्छा किया, लेकिन जो भी किया भगवान की इच्छा से किया और भगवान के अनुकूल ही जो भी कुछ करना था वो किया। अपने को इस्तेमाल करने दिया एक खिलौने के रूप में, करो मेरा इस्तेमाल और मुझसे जो भी करवाना है करवाओ और जो भी जगत को उपदेश दिलवाना है वो दिला दो, मैं तैयार हूँ, जैसे भी उपयोग करना है मेरा करो। तो ऐसे महान व्यक्ति को भी उन्हें भगवान ने क्या साबित किया कि ऐसा महान व्यक्ति भी अगर असत्य के पक्ष में रहता है तो उसका विनाश निश्चित है। ये अगर बताना है लोगों को तो किसी महान व्यक्ति को यूज़ करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो इसलिए उन्होंने विश्वदेव को उपयोग में लाया, बोले ठीक है कोई बात नहीं। भगवान अपने भगवान के भक्त अपने भगवान के लिए क्या नहीं करते, खुद का सम्मान भी त्याग कर देते हो, खुद का सम्मान, खुद का स्वार्थ, खुद का खुशी, खुद का जो भी कोई सब कुछ त्याग कर देते हैं भगवान के लिए, उसी को भक्त कहते हैं। भक्त के अपने जीवन में अपना कुछ एजेंडा नहीं होता है कि मेरा भी कुछ मिलना चाहिए मुझे उसका, जो भी कर रहा हूँ बहुत कुछ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत तो मुझे मिलना ही चाहिए उसका, कोई सोचता नहीं भक्त ऐसा कभी। चाहे उसके गोद में हजारों दुख पड़े इस सेवा करने के पश्चात तो भी वो सेवा नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो दुख या सुख के लिए सेवा करता ही नहीं है, तो सेवा केवल भगवान के आनंद के लिए करता है। और भगवान को आनंद हो रहा है सेवा में और मुझे दुख प्राप्त हो रहा है तो मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। ये भगवान के भक्त का चरित्र है। बोलो विष्णुदेव भगवान की। उन्होंने बाणों की शैया पर पड़ के हुए ये 5 दिन का व्रत किया था और ऐसी अपनी योग्यता बनाई उन्होंने भगवत धाम जाने की। इतने श्रेष्ठ तरीके से भगवान सामने खड़े हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों से घिरे हुए हैं, उधर नारद मुनि आए हुए हैं, उधर शांडिल्य ऋषि आए हुए हैं, उसके वशिष्ठ मुनि आए हुए हैं, व्यास मुनि खड़े हैं, सब जितने भी दुनिया के जितने संत थे सब वहाँ इकट्ठा हुए हैं। सोच सकते हैं आप, दुनिया का जो जो संत है वो वहाँ उपस्थित है। वो अपने आप को भाग्यवान समझ रहा है वो संत कि इनके मृत्यु के सामने उनका जो शरीर भगवान की सेवा में अर्पण हो रहा है और वो गोलोक धाम प्रवेश करने जा रहे हैं, इस घड़ी का हमको साक्षी होना चाहिए, वो साक्षी होना हमारा भाग्य है, ये समझकर सब तपस्या छोड़कर वहां पर उपस्थित थे। बोलो ऐसे व्यक्ति थे वो, मतलब जो संन्यस्त वृत्ति के लोग थे, व्यासदेव नारद मुनि जैसे आश्रित देवल जैसे साधु थे, वो भी ऐसे राज करने वाले एक राजकुमार और युवराज जैसे व्यक्ति के ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति को इतना मानते थे कि हमसे कम नहीं कोई, हमसे बढ़कर है ये, सम्माना नहीं हमारे लिए, हम लोग तो विरक्त लोग हैं फिर भी हमारे लिए भी सम्माननीय व्यक्ति है, चाहे ऐश्वर्यपूर्ण वस्त्र में राज दरबार में खड़ा हो लेकिन फिर भी ऐसा ऋषि है ये। सब लोग उपस्थित थे, ऐसी मृत्यु किसी की नहीं हुई आज तक पूरे इतिहास में। भगवान नाम का स्मरण, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन, संतों का सान्निध्य, सबकी शुभेच्छाएं, भगवान का आशीर्वाद, क्या चाहिए आप जिंदगी में, इससे बड़ा श्रेष्ठ मृत्यु किसी का भी नहीं हुआ। इसलिए उनका चरित्र हम याद करते हैं, इनका मृत्यु का भी याद करेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। जिस प्रकार के गुजर गए ये देखकर ये भी सुनेंगे तो भी हमारा जीवन धन्य है। इनके भगवत धाम गमन का श्रवण भी करेंगे तो भी हमारा भक्ति जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा चरित्र है इनका, प्रातस्मरणीय चरित्र है। पुत्र सुबह उठ के विष्णुदेव की याद करेंगे तो भी आपका जीवन धन्य है। ऐसे भक्त थे वो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।